आज के दिन हम देखा चाहिए था जगत में प्रादुर्भाव हुआ पहले भक्तों का जगत में आना पहले भक्त ही जगत में आ भूमिका को प्रस्तुत करते उसके बाद में श्वेताचार्य जो जगत के उपादान कारण है वो आते उपादानों को सब शिक्षा प्रसंग प्रकृति ठीक रहते हैं और उसके बाद में स्वयं इनके अंतिम जो मृत्यु के दिन में क्या और इसके बाद ही वो प्रभु स्वयं राधा माँ और अंति लेकर के जगत में और कभी इस तरह से महाप्रभु जी की लीला आप लोग अभी ये बात श्रीमद और द्वैताचार्य अद्भुत कीर्ति जस्य कुशाचार अव्ययो की सब अद्भुत चेष्टा विशिष्ट अवेदाचार्य की वंदना करता हूँ जिनकी प्रकार के अव्य व्यक्ति जी उनके गुरु पर सत्व का सहज ही निरूपण कर सकता है अद्भुत चेष्टा नहीं नित्यानंद प्रभु देखने के ही उनका भी बाल लग गया फिर कहां का अवधूत आज हमारे घर में आकर चारों तरफ में प्रसाद छिंच दिया ज्ञान नहीं लगे कौन जाति का है तो जाति हम ब्राह्मण प्रेम और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अरे अपराधी महाप्रसाद के प्रति अपराधी इसको तुम अन्न मानता है
अद्भुत
और इसको खींचना मानता है इसको ये नहीं देख सका कि इससे पुत्री भी कल्याणमय बन गई और जिनके जिनके में ये शरीर मैं ये प्रसाद अन्न लगा उसके स्वस्थ से ही एकदम कर गया इस तरह से उन्होंने बीच बीच में झगड़ा लगता है जब स्नान करने जाते हैं तो जरूर झगड़ा लगता है नित्यानंद प्रभु जी अल्प वयस्क है और वो है और उनसे भी अल्प वयस्क कौन है महाप्रभु जी सबसे छोटे उम्र ही इसके बाद में नित्यानंद और उसके बाद में ऊपर और अद्वैताचार्य अद्वैताचार्य मतलब से अधिक तो ये इनके विचार है गुरु। एक पहली महाप्रभु जी के पास भी भेज दी बाजारे ना भी कहे चाहू आऊ कहे बाहू के कभी हो गया आऊ कह रहा है एक पागल दूसरे पागल को कह रहा है और संदेश देने वाला भी पागल है संदेश जिससे द्वारा जो भेज रहे हैं नहीं दिया एक बाबू स्वामी बाबू अभी मैंने अब बेचा गया और एक बाबू के कमी हो गया है एक बाबू मैंने महाप्रभु बाजारे ना बिकाए जाओ और बाजार में चाव की बिक्री नहीं है
बाबू जी कोई काटे नहीं बाउल
दुकान की जरूरत नहीं है दुकान उठा लेने की जरूरत है बाजार में दिखती नहीं दिखता नहीं है क्या ये ताजा किसी के समझ में नहीं आया महाप्रभु की कुछ उदासीन केवल स्वरूप दामोदर भी कुछ छुप का भाव समझे और कोई नहीं समझे ऐसे शुरू होते एक पागल मैंने कृष्ण प्रेम का पागल और दूसरा जो कृष्ण के प्रेम के जगत को पागल बनाने आया है वो भी पागल पागल भ्रष्टाचार जी एक पागल संदेश भेज रहे पागलपन का संदेश कल्याण में चाहू की जरूरत नहीं मैंने प्रेम की अब जरूरत नहीं प्रेम से सब जिसको जिसको देना था वो काम पूरा हो गया इसलिए अब दुकान हाथ उठा दिया जाए मैंने अपने अवतार को और संभाली करते किसी के समय नहीं आया क्यों नाम कर दिए कुछ इस तरह से उनका अद्भुत के साथ गीता का अर्थ भक्ति पर वो बखान करते हैं और तो नहीं बखान कर गीता का भक्ति पर अब एक बार साहस लगाते हैं कि वो भगवान में जीव मिल जाता है ब्रह्म में मिलकर के विषदे सदर अहंता हम ब्रह्मात्मी कहते हुए और उसे जो पृथक जीव मालूम होता है अभ्यास करते 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 जगत सीधा है और अंत में उन्हें निगुजा विसदे इसकी व्याख्या द्वैताचार्य सबसे पहले उन्होंने किया है सततम तीर्थयन को इससे पहले का है और वो क्या है हमारा धर्म उसके लिए बनता है कि उसके मान में अनन्य मान ये जना पद पास और लगते भक्ति पाराम
ब्रह्मपुत्र
अंत में भक्ति लाभ करता है कौन भक्ति पाराम इन चीजों के माध्यम से विशदे सदनंतरम भक्ति में प्रवेश करता है विशदे भगवान में ब्रह्म में ज्योति मिल जाती है ऐसा नहीं विशदे उनके धाम में प्रवेश करके उनकी सेवा में प्रवेश करता है इसका किंतु वो लोग चिंता चिंता का सता देते हैं इसलिए कहते हैं कि हम यही अद्वैताचार्य कुछ दिनों के बाद में शांतिपुर में जा सके विषदे तदनंतरम का यही अर्थ बतलाया हम ब्रह्मास्त्र में ब्रह्म हूँ और जी ब्रह्म भी तो महाप्रभु गए और सावर तो मुक्के से थप्पड़ से जैसे बना दाढ़ी नोच नाच का और उन्हें पीट करके दुरुस्त कर दिया
सीता जी की
मां देवी जी ने आकर के उनकी रक्षा कर अद्भुत क्यों और मां खा करके बड़े प्रसन्न होकर के नृत्य करने यही तो मैं चाहता मैं और मेरी ये मुझे प्रणाम करते थे और मेरी उपासना करते थे गुरु के रूप में माधवेंद्रपुरी के पास के शिष्य ये हैं अग्रि दर्शन। महाप्रभु जी सोचते थे ये हमारे गुरु जी के ये शिष्य हमारे ये गुरु
परम गुरु जी के शिष्य
हमारे दिन गुरु, तो इसलिए इनको प्रणाम करना इनका स्तुति करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए महाप्रभु जी करते थे और ये देखते थे कि हमारे अंशी के अंशी के अंशी के मूल ये स्वामी महाप्रभु हमारे ये आत्मा, इसलिए ये अपैताचार्य उनकी इनका भजन करना चाहते थे, सेवा करना चाहते, उस सेवा से हटाने के लिए ही अपैताचार्य ने निर्विशेष बात गीता का रक्षा महाप्रभु जी बिगड़ कर जीवन मारने के लिए मारने लगे। आज मेरा जीवन सार्थक हो यही मैं चाहता था कि हमारी आप सेवा कर। अब आप पढ़े हैं कि मैं बड़ा हूँ, अब कौन हुआ। महाप्रभु लज्जित हो गए और सती देवी को एक बार कह दिया कि तुम्हें प्रेम नहीं देंगे, हमारे भक्त का तुमने निरादर किया है, वैष्णव पराग हो गया तुम्हारा। तुमने कहा इसे अद्वैत नहीं, तो ये तो द्वैत है। तो बात तो अच्छी ही थी, बात बुरी क्या थी? द्वैत अच्छा है ना अद्वैत अच्छा है? द्वैत ही तो अच्छा है, शब्द सेवक का भाव है। तुम्हें तू अद्वैत नहीं है, द्वैत है। महाप्रभु जी ने कहा जैसे ये माता जी का ये कहना है कि पुत्र से माता से पुत्र को अलग करता है, पिता से पुत्र को अलग कर देता है, भाई से भाई को अलग कर देता है। ये अद्वैताचार्य भक्ति का काम करके और ऐसा ही कर देता है जैसे कि संसार से उसका संबंध काट देता है। मैया का मानव प्राकृतिक स्नेह है नहीं, वो तो कृष्ण के प्रति महाप्रभु जी के प्रति उनका अनुराग है, इसलिए वो कह सकते हैं इसे बढ़कर क्या अच्छा क्या होगा। किंतु संसार के लिए यदि कोई ऐसा उपदेश दे करके जो जीव कोटि जन्मों से भगवान को बुने हैं उनके साथ में संबंध स्थापन करके उनके भजन का उपदेश देता है और संसार की श्रृंखला को काट देता है, इसे बढ़कर क्या अवसार क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वरूप को हमसे अलग कर दिया, ये इसको भी शिक्षा देकर के हमसे अलग कर देगा, ये भी कहीं चला जाएगा सन्यासी बन जाए। इसलिए अद्वैत अर्थात एक में मिला हुआ ये संसार नहीं देखना चाहता, ये द्वैत चाहता। महाप्रभु जी ने कहा जारी हमारे भक्तों को तुम ऐसा चाहती हो, तुमको प्रेम नहीं दे। तो मैया को कहा, मैया करके खड़ी हो गई, सब लोगों ने कहा कि इसको प्रेम दे। अरे अद्वैताचार्य के चरणों में अपराध, तो वो चली गई और अद्वैताचार्य से क्षमा मांगा, वो उनके चरणों में गिर गए। आप जगत के नहीं है, आपका कभी अपराध नहीं होता। फिर उन्होंने कहा ऐसे तो ठीक है, यदि कोई कहता है अपराध है तो मैं क्षमा कर देता। जैसे किसी ने कहा कि कृष्णचंद्र का बुखार उतर जाएगा चरणों की धूली से, तो वो क्या मिटा गया ले लो। ऐसे ही उन्होंने कहा यदि हमारे प्रति अपराध है तो मैं तो लाख मुख से कहूंगा जी नहीं अपराध है, हम क्षमा करती हूँ। आकर के महाप्रभु जी फिर ऐसे ही अद्भुत चेष्टा और क्या चेष्टा। कृष्णचंद्र जी लोग वृंदावन में जाने पर कृष्ण लीला समाप्त करने पर सोच रहे हैं भाई हमारी तीन इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। राधा जी की प्रणय महिमा, कृष्ण का माधुर्य और आस्वादन करने पर उसका तू, ये बिना राधिका जी के भाव के और उनको की शांति के लिए नहीं सुनवा। तो ये हमने तो आस्वादन किया नहीं, मैंने बात्सल्य रस तप्सरस माधुर्य रस सभी रसों का आस्वादन किया, किंतु राधा जी को हमें देखने से कैसा सुख होता है और हमारे पति का जो प्रणय है वो कैसा है प्रेम, ये तो मैं सब अनुभव नहीं कर सका, ये अनुभव कर रहा है। इसके लिए सोचे जैसा मुझे फिर ब्रज में जाना पड़े, मैं जगत में जाकर के अनुभव करूं। उसमें युग धर्म भी उपस्थित था, कली काल आ गया। तो कली काल में कली की आयु 432,000 वर्ष की है। साधारण रूप में भगवान का अवतार किसी युग के अंत में ही होता है, जैसे त्रेता युग के अंत में राम आए, द्वापर के अंत में ही कृष्ण आए, ऐसे युगावतार युग का जब प्रयोजन होता है अंतिम चरम अवस्था पर वो श्रृंखलता बढ़ जाती है। धर्म संस्था नाथाय सब आते हैं, तो इसलिए वो सोच रहे थे ये अभी और देख और पाप बढ़ जाए और उच्छलता बढ़ जाए, वैश्यदानों सब ये सब कर रहे हैं करने, तो मैं कब अवसरित हूँ इस पर विचार कर रहे थे। आना किंतु था कि निश्चित चलेंगे, कारण क्या, दो मान मैंने क्या, युवों को युग धर्म प्रचार करना अतक न का प्रचार, जीवों में प्रेम दान करना आस्वादन एक प्रेम दान एक, तो दो मुख्य कारण और दो बहुल कारण है महाप्रभु जी के। मुख्य कारण मुख्य का मुख्यतम प्रेम आस्वादन करना राधा, और दूसरा गौण कारण अनर्पित चरण किरात करुणया वत्सलिना हो, अनर्पित चर प्रेम देना। वो भी प्रेम कैसा, उन्नत उज्ज्वल रस दे, उन्नत उज्ज्वल रस किसको कहते हैं, गोपियों के पार्थिव भाव का नाम ही उन्नत उज्ज्वल रस, किसको देने के लिए, तो राधा जी का तो यही है भाव, तो इसको देने के लिए है नहीं। उन्नत उज्ज्वल पार्थिव रस भी दो प्रकार का है, एक तो राधा जी का भाव जो देने लायक है, और दूसरा पांच सखियों में से जो जो दो सखियां नित्य सखी और प्रिय प्राण सखी हैं, इनका जो राधा जी की सेवा और उनके अनुगत्य में कृष्ण की सेवा है, ये चीज उन्नत उज्ज्वल है किंतु ये दिया जा सकता है, यही जीव मात्र का स्वरूप है, इसलिए इसको देने के लिए, जीवों के स्वरूप को देने के लिए, आराधा जी के स्वरूपगत प्रेम का आस्वादन करने के लिए, और जदा जदा ही अधर्मस्य ग्लानिः धर्मस्य ग्लानिः भवति, ये दूसरा गौण कार्य, और इसमें युग धर्म का नाम संकीर्तन का प्रचार करना ये मुख्य कार्य गौण में, ये चार कारण थे। महाप्रभु जी कृष्ण विचार कर रहे हैं कि मुझे कब चलना चाहिए, युग धर्म के लिए तो अंत समय ठीक है, नाम प्रचार करने के लिए प्रारंभ से नाम का प्रचार किया जाए तो युग का प्रभाव जो है वो जीवों पर कम रहेगा, उसे उनका कल्याण, और प्रेम कब देना चाहिए और आस्वादन कब करना चाहिए ये विचार कर रहे हैं। इतने में एक और कारण आ गया, अगले चार चार दिन देखा जी भक्ति जगत से लुप्त हो रही, अभी प्रथम चरण में ही न जाने पीछे क्या होगा, महाविष्णु के रूप में विचार कर रहे हैं, कहाँ अवतार के पहले कहाँ रहते हैं, शरणाधिकारी में सैन करते हैं न, वहाँ विचार कर रहे हैं दीरजा में, यहाँ पर भी सात्विक राजसिक और तामसिक प्रकृति का कोई भी इतनी साम्य अवस्था है, वहाँ पर ये विचार कर रहे हैं, ये प्रभु कब न जाने आएंगे, और इधर जगत के उपादान कारण है ये जगत का दो कारण एक उपादान और एक निमित्त निमित्त को किसको कहते हैं पंडित जी जहाँ व्याख्या कीजिए तो
जिस प्रकार घाट है घाट में जो घाट बनती है उसमें जो
घाट बनती है
जो घट बनते हैं तो उसमें सबसे पहले जो पहले जो मुख्य कारण है उसे उपादान कारण कहते हैं और गौण कारण को निमित्त कारण कहते हैं। मुख्य कारण जिस प्रकार जैसे
उल्टा हो गया
मुख्य कारण है जिस प्रकार माटी है जो माटी आगे भी था अभी भी है बाद में भी रहेगा। माटी न रहने से जो कुम्हार था कुम्हार घट नहीं बना पाएगा।
तुम्हें बोलो था उत्पादन करने जीवस्तु द्वारा जीवस्तु द्वारा संबंधित है जीवस्तु करी बड़ा था उत्पादन का चिंतित और निमित्त कारण निमित्त कारण जीवस्तु प्रतिष्ठे जीवस्तु करी है ताहले निमित्त दोनों में मुख्य कौन है
दोनों में उपादान मुख्य है
निमित्त कारण से मुख्य वो कारण निमित्त मुख्य उपादान। भाई तुम बीच में कोई मीमांसा करो तो कोई मीमांसा नहीं तुम्हारा तुम बोलो तो
निमित्त मुख्य है
वो कह रहा है जैसे वो निमित्त मुख्य है और ये कहते हैं उपादान पंडित जी सब शास्त्र देखे होंगे।
नहीं नहीं अब ये दो तरह का जगत की तरफ से देखने से
तो मुख्य कारण है
ये ऊपर से भी देख रहे हैं
हो
और धागा हो डंडा हो निमित्त कारण अर्थात कुम्हार न रहे तो बना नहीं पाएंगे इसलिए कुम्हार ही
नहीं यदि इस तरह से देखे तो उसके मुख्य कारण कहा जाएगा क्योंकि
नहीं मत कहिए
नहीं जैसे
युक्ति से माया
कुम्हार का क्या प्रयोजन है कुम्हार का तो जरूरत नहीं है जरूरत घट का है तो घट का जब जरूरत है कुम्हार होने से क्या घट का काम चल जाएगा नहीं चलेगा। मनुष्य को जरूरत है घट
अंजलि से पानी पिला देगा
नहीं जब अंजलि से जब मान लीजिए
घट मान लिया कि मिट्टी है मिट्टी अपने कोई काम करेगा
नहीं मिट्टी काम नहीं करता
पानी पिलाने का काम घट का है ना
हाँ घट का है
पानी
हाथ में से कितना होगा
मान लीजिए पीले
जहाँ पर मुख नहीं है मतलब वो काम नहीं कर सकता है जहाँ वो काम नहीं कर सकते इतने दूर से कहाँ पानी पिएंगे मान लीजिए एक मिनट दूर में है पानी तो यहाँ लाने में कितना ऐसे पी सकते हैं
घट खाली है और जब गंगा से पानी लाना है घट अपने लाएगा
वो तो दोनों तरफ से विशेष समय के अनुसार वो मुख्य वो गौण है।
अब इसे देखो समझो निमित्त कारण और उपादान कारण निमित्त विष्णु है और कारण विष्णु उपादान महाविष्णु जो है प्रणाधिकारी विष्णु स्वयं स्वरूप वो निमित्त कारण है और इनके जो अंश है अभ्यचार्य वो
उपादान कारण
शब्दों में कौन मुख्य हुआ
और उधर से देखो से कारण मुख्य
सब तरह से
बचा
एक आदमी तो मैंने कहा तो ये आदमी ठीक नहीं ये बड़ा बदमाश चोर चुटका लमसंगा उसको यहाँ से गर्दन पकड़ कर से उसको पाए कभी पक्का देना कभी न खाए तुम जानता नहीं ये तो वो कहता है तुम्हारे कहने से उसको तुमने बाहर कर दिया अब उसको बाहर करने का कारण कौन है मैं कह करके घर में चला गया ना मैं कह करके चला गया और तुमने क्या किया जिस हजार लोगों में वो बैठा था सब लोग देख रहे थे ये उसका गला पकड़ करके गले में हाथ दे करके यहाँ से बाहर कर रहा तुम हुआ उपादान कारण मैं निमित्त कारण असल कारण कौन है उसको बाहर कर दे ऐसे ही समझो निमित्त कारण चेतन होता है निमित्त प्रकृति मैंने भगवान की इच्छा वहाँ पर निमित्त है करना भी चाहिए और महत्त्व जो है वो कारण है, उपादान वो प्रकृति है जिसको प्रसव करती है। निमित्त कारण के रूप में कर्णाधिकारी विष्णु स्वयं रूप में उसके तरफ में इच्छा करते हैं ये जगत सृष्टि हो, और उपादान कारण जो उपादान प्रकृति है जड़ है अचेतन है वो चेतन है कि नहीं, इच्छा तो है ना। और ये उपकरण महत्त्व जो है ये है जड़, उस जड़ प्रकृति में अद्वैताचार्य जी शिक्षण करते हैं कि इससे ब्रह्मांड है। अब वो दोनों मिलकर के निमित्त और उपादान जगत की असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड होता है ना? यदि प्रभु की इच्छा ही नहीं होती तो फिर क्या होता, सब किसी भी कार्य में कारण जो होता है इच्छा होती है वो। इसलिए अद्वैताचार्य उपादान कारण है वो निमित्त कारण के अंश है,
निमित्त कारण ही मुख्य है,
इसलिए निमित्त कारण उनकी इच्छा है इसलिए वो निमित्त आया समझ
है।
इसलिए अद्वैताचार्य महाविष्णु जो है कारणार्थी चाहिए जो उनके ये अंश, इसका ये सब में विवरण सब ये दिया गया है। कहते हैं अद्वैताचार्य होता है साक्षात ईश्वर, जार महिमा नहीं जिगर गोचर, महाविष्णु सृष्टि कर जगत आदि कार्य के महाविष्णु माने जगत इत्यादि कार्य सृष्टि करते हैं, कहा अवतार साक्षात
अद्वैताचार्य
अवतार। इसलिए विष्णु की जो इच्छा है वही निमित्त कारण है महाविष्णु की, और उनकी इच्छा के अधीन अद्वैताचार्य की जो इच्छा है ये
गौतम,
ये भी महाविष्णु है वो भी महाविष्णु है, किंतु वो महाविष्णु के ये अंश है। यहाँ पर उपादान क्या है, महत्त्व, महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से पांच प्रकार के रूप रस गंध शब्द स्पर्श
पंच तन्मात्र
एकादश इंद्रिय, और फिर इनके संयोग से पंचभूत स्थूल, स्थूल पंचभूत पीछे होता है, तो ये कितना हुआ, सोलह हुआ है, सोलह और इसके बाद में पंचभूतों रूप और शब्द ग्रंथ स्पष्ट होते
हैं
पंच तन्मात्रा, तो ये पांच और वो ग्यारह
इंद्रिय,
सोलह और पांच एक ही पंचभोग, और मन मंत्र हो गया, बुद्धि और अहंकार जोड़ दिया है, तेईस हुआ अहंकार, तो उसमें हाँ अहंकार चार, चौबीस प्रकृति और पुरुष, छब्बीस आत्मा और परमात्मा, ये अट्ठाईस तत्व हैं, जिसमें दो को छोड़ करके बाकी को सांख्य लेते हैं
छब्बीस,
और परमाणु वाले लेते हैं, परमाणु माने
नहीं आई
नहीं आई लेते, भगवान को और जीवात्मा को उसमें नहीं लेते। पुरुष जे पुरुष सृष्टि करण माया है, पुरुष सृष्टि स्थिति करण माया है, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करण या अद्वैताचार्य का इच्छा है, अनंत मुक्ति करण प्रकाश एक एक मुक्ति करण ब्रह्मांड प्रकाश प्रवेश से पुरुष अंश और द्वैत नहीं कुछ भी है, उनकी ये अंश है मैंने महाविष्णु के ये अंश है। सहाय करण का लैया प्रधान कोटि ब्रह्मांड करण इच्छा है निर्माण, माया जैसे द्वि अंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान, किसी को भी अभी तक नहीं बताया। एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण, एक उपादान प्रभु, एक निमादान निमित्त प्रभु। महाविष्णु कणाद्विताई विष्णु स्वयं निमित्त प्रभु, निमित्त और ये कोई कोई कहते हैं ये प्रकृति से स्वयं सृष्टि होती है। स्वयं सृष्टि को कहे कैसे उदाहरण दिया ना? एक तृण है, हरे हरे तृण है और उसको गाय खाती है और गाय खाने से उसको दूध उतरता है ना? तो गाय ने दूध हाथ खाया और अपने आप दूध उतर गया, इसमें दूसरे लोगों की जरूरत क्या है? इसी तरह से प्रकृति अपने आप सब कुछ करती है। तो किसी भोले भाले वैष्णव ने कहा, पहले वाला जो युक्ति है वो पंडित जी ने कि भाई घास खाने से ही तो दूध उतर जाता है। तो वैष्णव थे सरल भोले भाले, जरा पढ़े लिखे कौन थे भाई, बैल भी तो वही घास खाता है, उसको क्यों पंडित जी थोड़ा सा सोचने नहीं लगे ये सब व्यक्ति याद रखना, नहीं तो तुम लोग को भोला भाला समझ करके ठग लेंगे। ये सांस वाले कह रहे हैं जैसे भाई वैसा होता है, अपने आप हो जाता है। भाई पैर को क्यों नहीं उतरता थी, वो भी तो अधिक घास खा ले,
बच्चा नहीं होते
ठीक है।
फिर उन्होंने कहा ये भाई जैसे उपादान कारण है, घर बना है ना, इसमें ईंट और ये सब दिखाई पड़ता है। तो वैष्णव ने कहा कि भाई यदि ईंट ही से घर होता और मसाले से और पानी और सीमेंट से, तो 1,00,000 बोरी सीमेंट यहाँ रखता हूँ और 10 करोड़ ईंट यहाँ रख देता हूँ और पानी यहाँ पर 1 सरोवर भर करके रख देता हूँ अलग अलग, और लकड़ी और पत्थर भी यहाँ पर रख देता हूँ, घर बन जाए?
नहीं घर बनेगा,
उपादान रहने से ही नहीं होगा।
ठीक, निमित्त वही मुख्य है, निमित्त
इसलिए निमित्त मुख्य है प्रभु की इच्छा है। उन्होंने इच्छा की, कागज और कलम सब कुछ है किंतु अपने से आप नहीं है, इसलिए जड़ उपादान जो प्रकृति है उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं होता जब तक कि प्रभु की इच्छा न हो। इसलिए अद्वैताचार्य ही उपादान के मुख्य प्रेरक है और निमित्त इसलिए प्रभु को कहा गया कि उन्हीं की इच्छा से ये कर्म करते हैं, इच्छा करते हैं, इसलिए अपने आप कोई भी कार्य नहीं होता जगत में। इसलिए प्रकृति बात जगत का है ये गबड़ का है।
पत्ता भावे कुमारी नाम संपत्ति यदि मुझे कुमारी का विवर पिता
क्या
जगत के विवर पिता बोल किन्तु शांख बताई तो भूल दीते
बोले
फिर वो कहते हैं कि एक पंगु है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति मैंने जड़ा और पुरुष चेतन, ये दोनों मिलकर के सृष्टि होती है। प्रकृति निष्क्रिय है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, और पुरुष जो है वो निष्क्रिय एकदम है, कुछ करता नहीं है, किंतु दोनों जब मिल जाते हैं तो अपने आप काम हो जाता है। ये जगत की अपने आप सृष्टि हो जाती है, सृष्टि करने वाला कोई नहीं है, जैसे आजकल वो साम्यवाद वाले कहते हैं। बंगाल का चौपट कर दिया, बंगाल को चौपट कर दिया और सभी देश को। अब वो लोग धीरे 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 सोच रहे हैं और किधर में आ रहे हैं, कुछ आर्थिकता की तरफ। तो कहते हैं जैसे इसमें भगवान की क्या जरूरत है गुटमु को मानने का, वो अपने आप प्रकृति ऐसी है जिसे कि ये सृष्टि हो जाती है। कहते हैं जैसे पंगू, पंगू माने लंगड़ा और एक अंधार, दोनों मिल गए। उनको जाना था कहीं मथुरा जाना था, तो लंगड़ा ने कहा कि हमको अपने कंधे पर चढ़ाओ, मैं आँख से देख करके तुमको बाएं दाहिना सामने रास्ता बतलाऊंगा, और तुम्हारा पैर है उधर में चलना, बस दोनों पहुंच जाएंगे।